बाजी हम तुम खेल अधूरा छूटे ना प्यार का बंधन जन्म का बंधन जन्म का बंधन टूटे ना मिलता है जहां धरती से गगन मिलता है जहां धरती से गगन आओ वहीं हम जाए तू मेरे लिए मैं तेरे लिए तू मेरे लिए मैं तेरे लिए किस दुनिया को ठुकराए किस दुनिया को ठुकराए दूर बसा ले दिल की जन्नत जिसको जमाना लूटे ना प्यार का बंधन जन्म का बंधन जन्म का बंधन टूटे ना मिलने की खुशी ना मिलने का गम खुशी ना मिलने का गम
खत्म ये झगड़े हो जाए तू ना रहे मैं ना रहूं तू ना रहे मैं ना रहूं
एक दूजे में खो जाए एक दूजे में खो जाए
मैं भी न छोड़ूं पल भर दामन मैं भी न छोड़ूं पल भर दामन
तू भी पल भर रूठे ना प्यार का बंधन जन्म का बंधन जन्म का बंधन टूटे ना प्यार का बंधन टूटे ना
ओम शांति। इतना कुछ सुनने के बाद इतना भाव विभोर होने के बाद कुछ सुनने को कुछ सुनाने को इच्छा ही नहीं है लेकिन रोल दिया गया है तो बजाना ही होगा। ये गीत बाबा अक्सर कहते हैं मुरलियों में जैसे आज भी हमने सुना एक दूजे में खो जाएं इतना खो जाएं तो तू ना रहे मैं ना रहूं ये सारा खेल तो मैं का ही है ना। तो जब बाबा कहते हैं बाप समान बहुत बड़ा शब्द है अर्थ क्या है यही अर्थ है हम दो एक हो जाएं। आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती लेकिन हम तो लीन करने के ही फराक में हम तो यही कर रहे हैं कि मेरा तो अस्तित्व रहे ही नहीं मेरा जो ये 84 जन्मों का संस्कार है वो रहे ही नहीं या जो 63 बर्ड्स का है वो भी रहे ही नहीं वो रहे ही नहीं तो क्या रह जाएगा फिर क्यों हम ये नहीं छोड़ना चाहते हैं देह को अभी देह की इतनी बात सुनी क्योंकि ये आइडेंटिटी बन गई है। अगर मैं अपने आप को आत्मा समझूं تو یہ سب جو ہے یہ تو ہے ہی نہیں. پھر تو میں کیا ہوں؟ اور یہی گیان ہم سالوں سے سن رہے ہیں, صدیوں سے سن رہے ہیں. تو اس گیت میں کتنی آسانی سے بتا دیا ہے کہ کہاں ملنا ہے اس کو, آسمان سے پرے, جہاں دھرتی سے پرے. اور جب آپ کہتے ہیں باپ سمان, تو اس میں ایک شبد بھی آتا ہے ٹیچر. آج کا شیرشک کچھ عجیب سا ہے, ڈبل رول. ڈبل رول سمجھتے ہیں نا سب؟ رول تو ہم کئی نبھاتے ہیں دن میں, ٹرپل شپل بہت بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ڈبل رول ہوتا ہے کہ یہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہی انسان کچھ اور کر رہا ہے بالکل الگ. ہمارے کون سے ڈبل رول ہیں؟ مین ڈبل رول. بابا جب کہتا ہے باپ سمان بنو, اس کے اگلی بات کیا کہتا ہے بابا؟ کون کون ہے باپ سمان؟ باپ سمان کون ہے؟ بابا کس کو باپ سمان کہتے ہیں مرلیوں میں, ابھیک مرلیوں میں؟ جی اس دھرتی پہ جو یہ برہمن ہم ہیں, ان برہمنوں میں سے بابا کس کو باپ سمان کہتا ہے؟ آپ نہیں ہے کچھ ٹیچر. ٹیچر بابا کہتا ہے کہ ٹیچر میرے گرو بھائی, ایسے کہتا ہے باپ سمان. تو آج ٹیچر کے بارے میں تھوڑا بہت ہم بات چیت کریں گے. ہسٹری میں بہت سارے اچھے ٹیچر ہوئے ہیں. سب سے مہتوپورن ٹیچر دواپر یوگ سے چانکیہ. چانکیہ کی نیتی مانی جاتی ہے. وہ نیتی اگر ابھی تک چلتی رہتی تو بھارت کا شاید یہ حال نہیں ہوتا. وہ ایبسولوٹلی صاف کلیئر کٹ نیتی تھی. اس کے بعد بہت سارے ٹیچر ہوئے, بہت سارے گرو ہوئے. اس زمانے میں گرو کو ہی ٹیچر کہا جاتا تھا, آج کل تو گرو کچھ اور ہے. گرو ہے میریکل دکھانے والا, آپ کو پار لے جانے والا وغیرہ وغیرہ, لیکن گرو کو ہی ٹیچر کہا جاتا تھا کیونکہ وہی سب ہمیں بچپن سے سکھاتا تھا کہ جیون کیا ہے, تم کیا ہو, تمہیں کیا کرنا ہے, سب بتاتا تھا. اب اس کلیوگ میں بھی ایک ٹیچر رہی ہے, وہ بھی بہت مہتوپورن تھی. شاید آپ کو پتا ہو, ودیش میں کوئی بتا سکے گا؟ ہیلن کیلر. بالکل. ہیلن کیلر ایک ایسی لڑکی تھی جس کا بچپن میں ہی, شاید ایک سال کے اندر اندر ہی اس کو ایک بیماری ہو گئی تھی, جو ڈاکٹر سچن کو پتا ہوگی. تو وہ بیماری کے کارن اس کا سب کچھ, سینسری جو بھی تھا, سننے کی شکتی, بولنے کی شکتی, سب دیکھنے کی شکتی, تینوں ہی نہیں, آپ مان سکتے ہیں؟ ابھی جیسے ہم نے انگریزی کی کویتا میں سنا, یا ابھی جیسے بتایا گیا کہ تمہاری آنکھیں نہ ہو تو تم مجھ سے پریم کرو گے, کان نہ ہو تو کرو گے, مکھ نہیں ہو تو کرو گے, اس کے تینوں ہی چلے گئے. تو اس نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں تھا, وہ تو کچھ مہینے کی تھی شاید, اور اس کا جیون جنگلی کی جیسے, کچھ پتا ہی نہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے. اس کو پھر ایک ٹیچر ملی, اس کے ماں باپ نے ایک رکھی اس کے لیے, ویسے تو دیکھ بھال کے لیے رکھی تھی. اس ٹیچر کا نام مجھے یاد نہیں ہے, سلیون. وہ کمال کی تھی, اس نے کیسے اس بچی کو جو کچھ دیکھ نہ سکے, بول نہ سکے, سن نہ سکے, آپ کیسے پڑھائیں گے اس کو؟ اس کو پڑھایا, اس کو پڑھایا, اس کو سمجھایا, اور اتنا پڑھایا, اتنا پڑھایا کہ آج کل کے جو ٹیچر ہیں وہ ایسا انسان نہیں بنا سکتے جیسے اس نے ہیلن کیلر کو بنایا. ہیلن کیلر نے پھر وہ کتابیں لکھیں جو بریل کی ہوتی ہیں, بلائنڈ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں کتابیں. اس کا نام اتنا بڑا. تو ٹیچر کا کتنا مہتو ہوتا ہے, لیکن اگر اسٹوڈنٹ نہیں ہو تو ٹیچر کیا کرے گا؟ کچھ کر سکتا ہے؟ تو پہلے تو اسٹوڈنٹ چاہیے نا. تو بابا ہمیں, جب ہم بابا کے پاس آتے ہیں تو پہلے ہم کیا بنتے ہیں؟ اس کے پہلے, سب سے پہلے بچے بنتے ہیں. बच्चे को प्यार मिलता है, बच्चे को भावना मिलती है, उसको कुछ सिक्योरिटी मिलती है, फिर वो जाता है पढ़ने, फिर वो कुछ सीखने जाता है। तो उसको फिर बाबा ने कहा कि तुमको स्टूडेंट बनना है, तो इसलिए इस जीवन में हमारा टीचर एक बाबा है। बाबा ने काफ़ी सब टीचर भी रखे हैं पर एक टीचर तो मेन वही है। तो हम पहले स्टूडेंट बनते हैं। तो ये जो स्टूडेंट हम बने हैं, हम अपने बचपन में भी देखें कि हम अपने स्कूल में सबसे पहले तो स्कूल में ही गए थे। हमारा कोई फेवरेट टीचर रहा था? किसी का कोई फेवरेट टीचर था? फेवरेट का मतलब क्या, कि डांटे नहीं प्यार करे? फेवरेट का अर्थ क्या, सपोर्ट करे, सब कुछ, वो कुछ भी करे अच्छा लगता हमें। और फेवरेट टीचर कौन नहीं था? सब खराब टीचर थे आपके स्कूल में? हाँ, मारने थे वो रॉड से, उससे लकड़ी से, हमारे स्कूल में होता था। हमारे प्रिंसिपल को बहुत शौक था, वो क्रोध के कारण नहीं करते थे, शौक था उनको, करते थे, लेकिन हम उसका कुछ असर नहीं होता था हमारे पर। लेकिन फेवरेट टीचर का अर्थ होता है कि जैसे कि आपको एक सब्जेक्ट पसंद ही नहीं है, लेकिन वो टीचर जो है वो ऐसे तरह से पढ़ाता है कि आप वो सब्जेक्ट अच्छा क्या, वो सब्जेक्ट इतना अच्छा लगने लग जाता है कि आप सोचते हो कि इसी में मुझे पढ़ना है, इसी में मुझे बैचलर्स मास्टर्स सब करने हैं। मेरे साथ यही हुआ। तो टीचर का बहुत महत्व है, वो आपको दिशा भी दिखाता है। आजकल तो टीचर काउंसलर भी हैं, लोग माँ बाप से बात नहीं करते हैं, टीचर से बात करते हैं, क्योंकि माँ बाप जब उसकी बात सुनेंगे तो अपना कुछ डालेंगे या कोई पर्सपेक्टिव, उनका दृष्टिकोण अलग होगा कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा। लेकिन जब काउंसलर के पास जाते हैं तो काउंसलर उस दृष्टि से नहीं देखता है। यही दृष्टि हमें भी बाबा बनाने को कह रहे हैं, राइट? तो आपकी भी कोई फेवरेट टीचर रहा होगा, रही होगी कोई, सोच सकते हैं आप, और क्यों फेवरेट रहा ये भी सोच सकते हैं। अब पहले हम स्टूडेंट बनते हैं, उसके बाद टीचर बनते हैं, राइट? यही होता है ना, और ज्ञान में आके भी यही होता है, होता है कि नहीं? होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं तो जैसे ही ज्ञान मिला उसी समय बोला टीचर बनो, पता ही नहीं है कुछ, कोर्स देना नहीं आता है कुछ मालूम नहीं है, सेंटर खोल लिया, खोलो जी सेंटर बैठ जाओ वहाँ। फिर उसके बाद जो आ रहा है उसको बता रहे हैं, वो जो हमारी कॉरेस्पोंडेंस कोर्स होते हैं ना, किताब, उसको देख देख के, तुम शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो, बोल रहे हैं जैसे कोई तोता बोलता है ऐसे ही बोलना। लेकिन आए लोगों ने कोर्स लिया तो वो स्टूडेंट उधर, शायद यहाँ भारत में होती तो बोलना अच्छा नहीं लगता है, शायद नहीं पढ़ती ये पढ़ाई, शायद ये पढ़ाई लेती भी नहीं शायद। लेकिन क्या है कि स्टूडेंट तभी तक हैं हम, लेकिन वो टीचर एकदम से बन जाना, तो इसलिए वो बड़ा अलग सा ही रोल था। काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, बिकॉज बाय हिट एंड मिस जैसे कहते हैं गलतियाँ करके सीखना, वो एक आई थिंक वो टीचर के लिए बड़ी अच्छी बात होती है कि वो टीचर भी गलतियां करता है उसे सीखता है, और नहीं समझ में आती है तो सीखता है। आई थिंक दिस इज वेरी गुड। फिर उसमें क्या होता है कि उसमें अभिमान नहीं आता, अहंकार नहीं आता है, आप उस स्टूडेंट के लेवल तक जा सकते हो, समझ सकते हो। तो अब मैंने सोचा कि आपसे पूछूं कि एक अच्छी स्टूडेंट की क्वालिटीज क्या होंगी, जल्दी से बताएंगे तो अच्छा रहेगा। एक, हाँ जी, ओबीडियंट, जो टीचर कहे वही करे, आज्ञाकारी। आपको मालूम है कि स्कूल में कितने ऐसे ऐसे महानुभाव रहे हैं हमारी हिस्ट्री में जो बिल्कुल ओबीडियंट थे ही नहीं, पता है आपको? और क्या बन, क्या जाके बने वो, क्योंकि टीचर उनको समझ ही नहीं पाए। कई ऐसे भी थे, है ना, उनको स्कूल से निकाल दिया था कि ये तो कुछ समझता नहीं है, पढ़ता नहीं है। एनीवे, ठीक है। और जो पढ़ाई उसकी समझ में आ जाए वो उसके ऊपर, क्षमता तो उसकी अपनी होगी, पर अच्छा स्टूडेंट होमवर्क करे। अच्छा, तो होमवर्क मिलना चाहिए, इसका मतलब ना होमवर्क पसंद था आपको स्कूल में जब मिलता था? नहीं पसंद था जी, सुने, कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान दे, और कुछ, पंक्चुअल, जो टाइम से आता है वो अच्छा स्टूडेंट, जो लेट आता है वो अच्छा स्टूडेंट नहीं है। और पढ़ाई में अच्छा, जो लेट आता है उसको इंटरेस्ट नहीं है इसलिए वो लेट आ रहा है। अच्छा ठीक, और कोई बड़ी बड़ी बात बताइए ना, ठोस बातें बताइए। स्टूडेंट का एक अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटी क्या होती है? हार्ड वर्किंग होता है, क्यूरियस, उसको जानने की इच्छा होती है। कई बार टीचर भी उसका जवाब नहीं दे पाता है, और नहीं दे पाए तो अच्छी बात है ना। टीचर अगर जवाब नहीं दे पाए तो कहते हैं स्टूडेंट को कि मुझे बात नहीं पता है, लेकिन अक्सर टीचर कुछ गोलमोल करके कुछ जवाब दे देते हैं, क्योंकि सबके सामने इज्जत का सवाल है। तो वो स्टूडेंट तो उससे तो संतुष्टता नहीं होगी उसको। और अच्छा स्टूडेंट आज्ञाकारी हो गया, जिज्ञासु हो गया। टीचर का रिगार्ड का अर्थ क्या है, कैसे रिगार्ड करना चाहिए? आदर का अर्थ क्या है? हर एक कल्चर में अलग अलग आदर। भारत में आदर करना, पहले जमाने में तो पांव छूते थे, आजकल हेलो हाय गुड मॉर्निंग करते हैं, और आजकल तो लड़ाते हैं। लेकिन अच्छा स्टूडेंट आदर का अर्थ क्या, आदर का अर्थ क्या है, रिस्पेक्ट का अर्थ क्या है? वो तो बाद में जाके होगा, उस समय कैसे पता लगेगा आदर करता है? एक तरीका तो बता दो आप, दो बाद में बताना। हाँ, पहले खराबी सोचते हैं। क्या हुआ, टीचर की स्टूडेंट की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है क्या, इतनी है बस? जो पढ़ता रहे, छोड़े नहीं पढ़ाई को कभी भी। और टीचर अगर उसको गुस्सा भी कर रहा है, टीचर उसको बड़ा बुरा भी बोल रहा है, क्लास में सबके सामने इंसल्ट भी कर रहा है, खड़े हो जाओ स्टूल पे, बेंच पे खड़े हो जाओ, बाहर खड़े हो जाओ, कभी बोले बचपन में मुर्गा बन जाओ, ये सब कराया ना टीचर ने, तो फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, क्या करेगा? कल से स्कूल नहीं जाना है। आजकल स्कूलों में ये सब बंद कर दिया गया है, क्योंकि टीचर नहीं, टीचर जो है ऐसे पढ़ाते हैं। मुझे भी यहाँ पे कुछ लड़कियां मिलती हैं जो हमारे यहाँ काम करती हैं, राजस्थानी लड़कियां, मैं अक्सर उनसे पूछती हूँ कि आप स्कूल नहीं जाते? तो दो तीन ने तो मुझे कहा कि हम स्कूल जाते थे, लेकिन वो जो मास्टर जी थे वो मारते थे, लड़की है छोटी है मारते थे, तो हमने स्कूल जाना छोड़ दिया। फिर एक कल परसों एक मिली, उसको पूछा, बोला कि मेरे सब अच्छे सब्जेक्ट में मार्क आए थे, मैथ्स में मेरे 2 नंबर कम आए थे, लेकिन टीचर को मुझ पर बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि उसने सोचा कि तुम्हारे नंबर क्यों कम आया, क्योंकि मैं अच्छी स्टूडेंट थी, तो सबको उन्होंने पास कर दिया, मुझे पास नहीं किया। स्टूडेंट की बातचीत चल रही है। अब अच्छा टीचर, योग्य टीचर, क्या होगी उसकी क्वालिफिकेशन? प्यार से पढ़ेगा, और उसके पास ज्ञान भंडार होगा, और समझाने का तरीका, फ्रेंड की तरह क्या करे, कॉफी पीने चलो, हाँ हाँ, तो मतलब ये नहीं कि बस वो इसी मोड में रहे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, उसके लेवल से उसको ऊपर लेके जाना, क्षमता को देखकर पढ़ाए। अगर ज्यादा नहीं पढ़ सकता तो उसके बाद बोझ नहीं डालना है, और तो कोर्स तो पूरा करना पड़ेगा ना, जो कोर्स मिला है, जो समझ में आए वही समझाए, जो समझ में नहीं आए नहीं समझाए। और पीछे पीछे वाले भाई लोग क्या, बहनें ही बोल रही हैं, पीछे के भाई नहीं नहीं, टीचर योग्य टीचर कौन है? पेशेंट, पेशेंट मतलब धैर्यता, ये बहुत बड़ी निशानी होती है टीचर की, धैर्यता। स्टूडेंट जो है वो टीचर को चैलेंज भी कर सकता है, कर सकता है, और चैलेंज करे तो टीचर क्या करे, तो टीचर के अंदर अहंकार होगा तो काम नहीं चलेगा, अहंकार होगा तो नहीं चलेगा। तो ये टीचर की काफी सारी क्वालिफिकेशंस हैं, और अभी तो बाबा हमारा टीचर है, तो बाबा में हम सब ये बातें देखते हैं ना, बाबा के अंदर धैर्यता है, अहंकार तो बिल्कुल है नहीं, और वो जितनी पढ़ाई उसके पास है सब हमें पढ़ाता है, और फिर वो स्टूडेंट को देखता भी है किस तरह से, प्यार भी करता है, बहुत सारी बातें होती हैं टीचर की। तो हम जब इस ज्ञान में आते हैं और हम जब स्टूडेंट से टीचर बनते हैं, हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। अभी हम कुछ और बातें भी सुनेंगे अच्छे योग्य टीचर की। तो अब टीचर जो होता है वो स्टूडेंट की बात बहुत ध्यान से सुनता है, सुनना चाहता है। एक होता है कि सुनना, और एक है सुनने की इच्छा रखना कि हाँ आप क्या बताना चाहते हैं हम सुनेंगे। ये एक टीचर का लक्ष्य अच्छा होता है। और सिर्फ वो उपदेश नहीं दे। आजकल कई बार क्या हो गया कि हम उपदेश देने लगे, हमें पता नहीं लगता कि हम उपदेश दे रहे हैं दूसरे को, क्योंकि अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि आप टीचर की आपके अंदर क्वालिटी है तो आप हर बात में टीच करते हैं, तो सुन के तो बड़ा अच्छा नहीं लगा एक सेकेंड के लिए, फिर लगा कि बात तो ठीक है। दूसरों को शिक्षा देना या शिक्षा, एक वो थोड़ा सा तो फर्क होता है ना, शिक्षा देना मतलब ऊपर जैसे बैठ के आप नीचे से उनको उपदेश दे रहे हो, ये हमारा कई बार संस्कार बन जाता है, पता नहीं लगता है, खासकर जब हम ज्ञान में आते हैं, तो इसका ध्यान देना। और जो सामने वाला स्टूडेंट है वो उसकी जो स्थिति है, वो किस स्थिति से गुजर रहा है, वो समझना और उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना कि वो उस स्टूडेंट का, क्या कहते हैं इंग्लिश में, विन देयर ट्रस्ट। स्टूडेंट जो है उन पर तो विश्वास पात्र बन जाए, टीचर विश्वास पात्र बने, तो स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़ेगा ना सर, उस पर भरोसा रखेगा। तो अब दूसरा एक क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट है उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, होती है, हमारे यहां जो स्टूडेंट्स आते हैं हम उसकी बात भी सुन, अभी ये बातें सब उन पे भी लागू होती हैं जो हमारे पास आते हैं, कोई उनकी समस्या है, कोई उनको दुख है, उस समय ज्ञान देंगे तो जाएगा अंदर, नहीं नहीं ऐसे करना चाहिए, नहीं बाबा ने कहा है, वो क्या डटा हुआ जो भी होता है हम बोलते रहते हैं उनको, उस समय कुछ नहीं अंदर जाता है, वो सामने वाले को इतना दुख है, उसके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना चल रही है, वो ज्ञान नहीं ले सकता। तो ज्ञान नहीं ले सकता तो क्या करें, उस समय आया तो है हमारे पास वो स्टूडेंट, समझ तो लें, हमें होता कि कोर्स तो पूरा कर लो भाई, तुम पहले कोर्स नहीं करोगे तो तुमको ये बात समझ में नहीं आएगी, अब कोर्स ले ही नहीं सकता वो भाई, पर हमें 7 दिन का कोर्स कराना है, रोज कराना ही है, जरूरी है 7 दिन का पूरा कोर्स कराना है। अभी जयंती बहन आए थे वहां तो हमारे यहां, तो उन्होंने कुछ लोगों के सामने जब बातचीत कर रहे थे तो भारतीय थे, उनको बोला कि आप सिर्फ 3 दिन का कोर्स ले लो, 1-1 घंटे का बस, आत्मा परमात्मा और ये अशक्तियों का, इतना ही ले लो, इतना भी ले ले, लेकिन उस लेने में भी कई बार बहुत टाइम लगता है, हफ्तों निकल जाते हैं हमारे, तो हम जब कोर्स देते हैं हफ्तों महीनों, क्योंकि जब तक वो सामने जो स्टूडेंट है उसको एक बात पूरी तरह से समझ आ जाए, वो अपना जो उसकी समस्या है, जो उसकी प्रॉब्लम चल रही है उसके साथ उसको वो जोड़ के उसका हल ढूंढ ले, ये नहीं कि हम हल बताते हैं पर उसको एक रास्ता बता देते कि वो हल उसमें से निकाल ले, और फिर योग। तो मैंने देखा कि सबसे बड़ा अच्छा होता है कि जब कोई इसी समस्या और बड़े दुख में आता है, एक तो उसका सुनना, हमारे यहां कहा जाता है कि लोगों की कहानियां मत सुना करो, लेकिन वो जेन्युइनली उसके अंदर कुछ हो रहा है तो हमको सुनना जरूरी है, क्योंकि सेंटर जो है वो एक आश्रम है ना, वो एक ऐसी जगह है जहां वो खुल के बात कह सकती है या कह सकता है, तो पहले तो सुने हम, बेशक हमारा ज्ञान 40 मिनट की जगह 10 मिनट हो, डजंट मैटर, उसके बाद योग कमेंट्री करवा सकते हैं, हम अपनी कमेंट्री उसको दें, उस कमेंट्री से उस आत्मा को वो सब महसूस हो और उसको अपने आप ही लगे कि मेरा सब आसान हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है मेरा, और वो उसको अप्लाई करे। अभी रिसेंटली एक मेरे पास स्टूडेंट आई है, बाहर की है वो, तो वो कहती है कि मुझे अगला लेसन मत दीजिए, मैं ये लेसन पहले अच्छी तरह से सीख लूं, समझ लूं, आजमा लूं इसको, तो आप मुझे अगला लेसन देना। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि सब कुछ बताना ही है, ज्ञान जो हमारे पास है। तो ये योग कमेंट्री मैंने देखा है कि ये बहुत काम आती है दूसरे को, पर हमारे अंदर वो योग कमेंट्री अलग अलग तरह की होनी चाहिए, सेम वही मैं आत्मा हां बिंदु ऊपर जा रहे हैं ये सब नहीं होनी चाहिए, अलग हमें भी कुछ इन्वेंशन खुद भी तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा टीचर उसको कहते हैं जो नई नई बातें सोचता है, जैसे डॉक्टर होते हैं अच्छे या लॉयर होते हैं, उनके पास बहुत सारी किताबें होती हैं, वो किताब में से देख के बोले, लेकिन वो बार बार नई नई चीजें भी तो पता करते हैं ना, तो हमें भी ये करना जरूरी होता है। अब जैसे सेंटर पे आते हैं, अब उनको स्टूडेंट कहें या ब्राह्मण कहें, टीचर का क्या रोल है, जो वहां पर सेंटर की जो बहन है या बहने हैं उनका क्या रोल है, जो ब्राह्मण आ रहे हैं आप में से कौन, खैर सारे टीचर होंगे पर वैसे सेंटर वाले या कुछ कोई हैं यहां पर, सेंटर स्कूल के टीचर हैं, हाँ ये बातें स्कूल में भी लागू होती पर हम ये ब्राह्मणों के साथ भी लागू कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा कि ये बात बहुत ज़रूरी है बतानी और समझनी हमको भी। तो अगर सेंटर पे ब्राह्मण आ रहे हैं उनके साथ वो जो सेंटर पे रहने वाली बहन कहो या पूरे एरिया जोन की टीचर कहो या नेशनल कोऑर्डिनेटर कहो या कुछ भी कहो, उसका क्या रोल है? वो तो खैर मिल जाएगी, उसका अपना रोल क्या है? उस टीचर का रोल क्या हो सकता है? प्यार से बिहेव करे। अक्सर हम क्या देखते हैं कि वो छड़ी तो दिखती नहीं है पर होती है, छड़ी छड़ी होती है। और जितना इंसान टीचर बनता जाता है, बड़ी बड़ा बड़ा पदवी पे होता जाता है, या स्टूडेंट 100 से 200 से 300 हो जाते हैं, तो कई बार हम खुद भूल जाते हैं कि हम भी स्टूडेंट हैं। हम वो टीचर की छाप जो होती है ना, वो स्टैंप लग जाती है अपने पर। और ये जब हम बाबा कहते हैं कि अभी भी सुना कि ये शरीर का छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, सारे लेवल सारे रोल छोड़ देते हैं, ये लेवल लग जाता है एक कि मैं टीचर हूं। और ये लेवल बहुत पक्का है ब्राह्मणों के लिए, ये लेवल आसानी से नहीं जाता है, शायद अंत तक नहीं जाता है। भगवान ने दिया है, लेकिन भगवान ने उस टीचर का मतलब क्या बताया वो तो कई बार भूल जाते हैं हम। और बाबा जो कैसा टीचर है, कैसा पढ़ाता है, तो उस टीचर का क्या काम है जो इतने सारे ब्राह्मणों को संभाल रही है, संभाल रहा है? स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि क्या करना चाहिए कि नहीं होना चाहिए स्ट्रिक्ट? लवफुल, लवफुल कौन सा पहले आना चाहिए? दादी प्रकाशमणि कहती थी, दादी प्रकाशमणि जैसी टीचर भी बहुत ही यूनिक है, लेकिन दादी प्रकाशमणि को सब पसंद करते थे क्योंकि अथॉरिटी थी उनकी काफी, लेकिन उनसे सबको प्यार बहुत महसूस हुआ था पहले। तो लॉ तो हम सब जानते हैं, बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ये कहा है, ये सब मालूम है लॉ, लेकिन लव मालूम है? और वो लव अगर अपने लिए नहीं होगा तो फिर वो लव दूसरे को भी नहीं दे पाएंगे। शायद हमारे अंदर वो कमी है कि हम खुद को इतना लव नहीं करते हैं शायद। और हम तभी अपने आप को लव करते हैं क्योंकि अगर मुझे कोई सामने वाला पूछता है या मेरे स्टूडेंट्स ज्यादा हैं या मैं सेवा करती हूं तो मैं अपने आप को लव कर सकती हूं। तो अभी जैसे कहा कि शरीर को लव नहीं करना, लेकिन खुद को लव कितना कर रहे हैं? तो सबसे पहली बात तो यह है कि टीचर जो है वो एक, ये शायद किसी ने बताया नहीं, उसको एग्जाम्पल होना पड़ेगा, रोल मॉडल। मतलब कि वो सामने वाला स्टूडेंट या जो भी ब्राह्मण है उसको देख के ही सीख जाए। अक्सर क्या होता है हमारे यहां, खासकर यहां, वो सारी श्रीमतें जो हैं वो सब पता है टीचर को, ब्राह्मणों को भी पता है, सब श्रीमत, सुबह उठना है, ये करना है, सब मालूम है, लेकिन बिहेवियर, मैनर्स, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे चाय पी रहे हैं, कैसे सामान रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। हमारे यहां ये देखा जाता है कि ये बातें टीचर कैसे कर रहे हैं, बैठ भी रहे हैं तो ऐसे करके बैठ रहे हैं महाराजा की तरह, सामान यहां वहां डाला है अपना, छोटा छोटा भी हो, क्लीनलीनेस कितनी है टीचर के अंदर, कोई करके चला जाएगा हम तो फेंक देंगे, कोई बात नहीं, ये टीचर है क्या? टीचर का मतलब ये सब बातें, श्रीमत तो हो गई, वो तो समझ में आ जाती है, श्रीमत तो करनी है, तो ये सब बातें। तो ये छोटी छोटी जो बातें हम जो बच्चों को सिखाते हैं ना किंडरगार्टन में या प्राइमरी में, ये हमारे अंदर भी होनी जरूरी है। बात करने का तरीका, रूडनेस, तू तू करके बोलना, तुम करके बोलना, छोटे बच्चों को हम आप कहते हैं आजकल, लेकिन स्टूडेंट्स को, ब्राह्मणों को कैसे बुलाते हैं? फिर उसका इसका मतलब है कि उसका जो बिहेवियर है, उसका जो बोलने का ढंग तरीका, वो बॉडी लैंग्वेज से भी समझ आ जाता है। आपने कुछ किया तो उसके आंखों से भी समझ आ जाता है कि आंखों से ही दूसरे को पनिशमेंट दे देना, अभी क्या कहा, नजर से निहाल, अभी निहाल ही कर देते हैं उसको, ब्राह्मण को ऐसे देखेंगे उसको कि वो तो बेचारा बस गया, आएगा कि नहीं वापस मालूम नहीं, हलाल। और सबके सामने इंसल्ट कर देना, अच्छा अब सबके सामने इंसल्ट हो जाए तो क्या करें, अपना जो अभी तक बाबा ने दिया वो करा उसका क्या हुआ, ये टीचर ही मेरी बाबा है क्या? बाबा कौन है? हम किसी भी इंसान को, चाहे टीचर हो या कोऑर्डिनेटर कोई भी हो, हम उसको ये अलाउ ही क्यों करें कि वो मेरे और बाबा के बीच में आए? Why do we allow? लेकिन हम करते हैं, अपने आप हो जाता है। उस समय बुद्धि कहां चली जाती है, वो अपमान, मेरा इंसल्ट हो गया। अच्छा हो गया इंसल्ट, कोई बात नहीं, ठीक है हो गया, थोड़ा रोना धोना आ जाएगा, शायद रोना आ जाए, शायद बहनों को आ भी जाता है, लेकिन उसके बाद मैं हु एम आई आंसरेबल टू, मुझको मेरा जवाबदार कौन है, वो टीचर है या बाबा है, जवाबदार कौन है। तो इसलिए मुझे अगर वो ऐसी टीचर मिलेगी जरूर, क्योंकि मुझे मेरा अहंकार तोड़ना ही है, किसी को बाबा कहता है ना बनना ही है, शायद मेरा अहंकार है, शायद मेरा कुछ और है, तो उसके लिए वो इंसान वहां बैठा है। लेकिन मेरा बाबा से रिश्ता जो है, या मेरा जो प्रेम की भावना, वो प्रेम कहां चला जाता उस समय, कोई प्रेम नहीं है, ना अपने लिए प्रेम है ना दूसरे के लिए प्रेम है, हेट्रेड। प्रेम तो छोड़ ही दो, प्रेम का उल्टा हो रहा है, तो क्या करते हैं फिर। सेंटर जो जाना है ना, बाबा का घर है, किसका घर है सेंटर, टीचर का घर है, बाबा का घर है, उसमें अधिकार है, बाबा ने कहा पवित्रता है तो अधिकार है आने का। तो इसलिए कभी भी टीचर को टॉन्टिंग, दूसरे को नीचा दिखाने वाले शब्द, ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कई बार टीचर ये भूल जाते हैं, हम बोलना शुरू कर देते हैं, हम समझते हैं ये स्टूडेंट है ना, इसको समझाना है, मैंने समझाना है, तो वैसे शब्द बोलते हैं जो घरों में भी माँ बाप बच्चों के साथ नहीं बोलते हैं। अब मुझे एक रूमी की कोट याद आ रही, रूमी एक बहुत बड़े सूफी, उसमें अंग्रेजी में है कि रेज योर वर्ड्स नॉट योर वॉइस, शब्दों को उठाओ, आवाज को ऊपर नहीं उठाओ, क्यों, क्योंकि इट इज रेन दैट ग्रोज फ्लावर्स नॉट थंडर, बारिश ही है जो फूलों को उगाती है, कौन नहीं उगाता है, गड़गड़ाहट क्या, थंडर, उससे तो कुछ फूल नहीं उगेंगे। तो हम जितना ऊंचा बोलें, जितना अथॉरिटेटिव टोन में बोलें, उससे कुछ नहीं उगेगा, लेकिन बारिश, कौन सी बारिश। अब कई बार क्या होता है, हम देखते हैं सेंटरों पर स्टूडेंट जो है बेचारा वो डिप्रेशन में आ जाता है। मैंने जब पहले ये देखा सुना कि ब्राह्मण होकर डिप्रेशन में आना, इससे दुख की बात और कोई हो सकती है, या इससे कोई आयरोनिकल बात हो सकती है, लेकिन होता है, क्यों, हम उस टीचर को खुश करने में लगे हैं, प्लीजर। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि प्लीजर नहीं बनो, हम उसको खुश करने में लगे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, या वहां से बहुत दबाया जा रहा है और दब जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं, और कई स्टूडेंट्स, कई ब्राह्मण, उनको कैंसर भी हो जाता है। आप कहेंगे कर्मों का हिसाब किताब, पहले का कर्म था, लेकिन ये जो दबाना 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 दमन करना, ये भी एक कारण होता है कैंसर का। इसका बहुत ख्याल रखना हमको कि मैं कोई भी बात दमन नहीं करूं और किसी को करने भी नहीं दूं, कोई ऐसा मौका देख के ढंग से बात करें। बाबा ने मना किया है क्या कि हम टीचर से बात नहीं करें, अच्छा समय देखकर, आजकल तो टेक्स्ट ईमेल सब है, लिख सकते हैं कि जी हमें आपके साथ समय चाहिए, थोड़ा सा 5 मिनट चाहिए, 2 मिनट चाहिए, बात कर सकते हैं। डिप्रेशन में आना, एक बार आ गए तो निकलना बड़ा मुश्किल है, डिप्रेशन के बहुत कारण होते हैं, पर एक कारण यह भी होता है, और जो टीचर वैसा कर रहा है उसका तो खैर कर्मों का हिसाब किताब अलग ही होगा, उससे बात करने से नहीं होगा, लेकिन मेरा मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि आई अपने को जस्टिफाई नहीं करना है, लेकिन ये बात जो आपने कही है मेरे ख्याल से ये सही नहीं है, और मेरे ख्याल से अगर आप इस तरह से आप मेरे साथ करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, इट्स जस्ट दिस मच। ये हम टीचर से भी कहते हैं और किसी और ब्राह्मण से भी कहते हैं, दोनों से कहते हैं, ये एक रिस्पेक्ट होता है, ये होता है रिगार्ड, रिगार्ड के बहुत अर्थ होते हैं। तो क्योंकि मुझे अपना ध्यान रखना है ना, तो इसीलिए सबसे जरूरी क्या है कि मेरी स्थिति ज्यादा जरूरी है कि दूसरे को खुश करना ज्यादा जरूरी है, क्या जरूरी है। बाबा तो स्थिति की बात करता है, हम चले आ रहे हैं खुश कर रहे हैं दूसरे को, फिर क्या कहते हैं कई स्टूडेंट, कई ब्राह्मण हमें क्या कहते हैं, यहां तो जी सिर्फ वो जो पैसे वाले होते हैं उनको ही पूछा जाता है, पैसा जरूरत है, आश्रम में जरूरत है, सबको चाहिए, काम है, लेकिन कितना चाहिए वो अलग बात है, पूछा जाता है, इसका मतलब मुझे पूछा नहीं जा रहा है, अभी तक मुझे पूछा जा रहा था, अब मुझे पूछा नहीं जा रहा है, तो पूछा जाने की तमन्ना ही क्यों रख रहे हैं हम, गलती तो हमारी होगी ना शायद उसमें कि मुझे कोई पूछे, नहीं पूछे, हमने जो सेवा करनी है तो बाबा देख रहा है ना, उसके और मेरे बीच में फल कौन देने वाला है, तो मेरे और उसके बीच में है, जो मैं काम करूं, स्थूल सेवा करूं, कोई भी सेवा करूं, छोटी सेवा करूं, सेंटर जाना बंद नहीं करना है। सेंटर जाना बंद हो जाता है कई लोगों का, बड़े दुख की बात है। ये बंद, ये अधिकार सबको मिला हुआ है। तो इसीलिए बाबा ने कहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो निमित्त होते हैं, उनको सब कुछ अफकोर्स जो रूल्स हैं बताने हैं, ब्राह्मणों को जो आते हैं सबको बताने जरूरी हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब कोई भी इंसान पावर में आ जाता है, उसको खुद को ही पता नहीं लगता कि वो क्या कर रहा है। और ऐसे आत्मा के लिए हमें रहम की भावना चाहिए, हेट्रिड की भावना नहीं, रहम। कि इस बाबा कहता है, बाबा ने एक बार मुरली में शायद कहा था कि कई ब्राह्मणों को अपनी गलतियां ही नहीं पता लगती हैं, कहां गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं लगता है। ये तो बहुत दुख की बात होगी ना, ये तो निवारण ही कैसे होगा। तो उस आत्मा के लिए हमको रहम होना चाहिए कि बाबा इसका भी कुछ बुद्धि ठीक हो जाए तो ये समझ जाए, क्योंकि उसके टीचर के कारण से कितने लोगों की डिसर्विस हो जाएगी ना। तो उस समय ये हम अपने अगर भावना रख सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब कई बार क्या होता है कि अगर हम सपोज टीचर हैं या उस सेंटर के बड़े हैं, कुछ हैं, सबके अंदर कोई ना कोई अथॉरिटी होती है, ठीक है ना। एक सबसे बड़ी अथॉरिटी क्या है यहां टीचर की, आप मधुबन जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, ये टीचर डिसाइड करता है। क्योंकि सारे ब्राह्मण मधुबन जाना चाहता है, एक उसकी इच्छा होती है मैं मधुबन जाऊं। अभी मैं देखती हूँ कि कितने मधुबन में आए हुए हैं, सब तरह के लोग आए, मैंने आज देखा कल मैं, हाँ 12 मीटर्स बस एक ही है, मैंने इतने देखे। मैंने कहा बाबा ये सब ब्राह्मण, ये ब्राह्मण भी नहीं है, सब कितने मधुबन में आए हैं और वहां इतने अच्छे अच्छे ब्राह्मण, हमारे इतने अच्छे अच्छे ब्राह्मण, मधुबन नहीं जा सकते आप, सपोज नहीं जा सकते हम मधुबन, सपोज कोई बात है, लेकिन बाबा जो है वो मेरी लगन देखता है, बाबा मेरी लगन देखता है, मेरी भावना देखता है। बाबा क्या कहता है कि तुम्हारे जो प्रेम के आंसू हैं उसको मैं मोती की तरह डिब्बे में रखता हूं, और उसको हमारी फीलिंग समझ में आती है, वो भी फील करता है। ये जरूरी है, मधुबन हम अपने आप जा बैठे हैं वहां भी बना लें अगर नहीं जा सकते किसी कारणवश। तो इसलिए ये बहुत सारी बातें तो बहुत हैं टीचर की। टीचर जो है कई बार आपको सेवा की चांस नहीं देता है, क्यों, आपने तो ये बात मेरी सुनते नहीं हो, आप तो हर बात में हां हां तो करते नहीं हो, आप तो बट कहते हो, लेकिन कहते हो, इसलिए आपको सर्विस देना बेकार है, नहीं देंगे सर्विस आपको। अब सेवा नहीं है तो बाबा कहता सेवा नहीं करोगे तो कुछ बनेगा ना आपका, तुम्हारा तो फ्यूचर नहीं बनने वाला, ये नहीं होने वाला। हम सेवा करना चाहते हैं तो क्या करें फिर, उस समय मनसा सेवा, लेकिन मनसा सेवा में उस समय कोई दुख ना हो, दुख नहीं होना चाहिए कोई उस बात का, या जैसे बताया घृणा नहीं हो, कुछ नहीं हो, डिप्रेशन नहीं हो, ये हो नहीं होगा तब मनसा सेवा होगी। हम पवित्र की बात करते हैं, मन पवित्र हो, लेकिन ये सब दुख लेना बहुत बड़ी बात है। ब्राह्मण बहुत दुख लेते हैं, आप एक दूसरे से लेते हैं या टीचर से लेंगे, निमित्त से किसी से भी लेंगे। तो ये है कि अब मेरे एग्जाम्पल्स बहुत थे लेकिन अब शायद समय नहीं है, कि मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत सबसे बड़ी टीचर दादी जानकी रही हैं। क्योंकि अक्सर जब हम यहाँ बैठते हैं तो हम अपनी अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं या दूसरे को बताते हैं कि जी मेरे साथ ये हुआ, अनुभव शेयर करते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव क्या है कि मेरे अनुभव वीकनेसेस के हैं। मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ कि मेरी बहुत बड़ी वीकनेस थी, बहुत बड़ी गलतियां हो गई थी, बहुत बड़ी, आप सोच भी नहीं सकते शायद। तो उस समय दादी जानकी ने क्या किया, उस समय ऐसा था मुझे कि इतना अंदर, ऐसे कई बार होता है कि इंसान इमोशनली लॉक्ड हो जाता है, जैसे कि कोई पत्थर हो गया इंसान, इतना दुख, इतना दर्द, पत्थर हो गया, हिल ही नहीं रहा है। उसको मेरे चेहरे से पता लगा, उसने बोला क्या हुआ, तो क्या बोली दादी, 2 दिन के लिए निर्संकल्प हो जाओ। छोटी सी बात बोली, इतना ही बोला, 2 दिन हो तुम यहां पर, तुम 2 दिन निर्संकल्प हो जाओ, कुछ नहीं सोचो। मैंने वही किया, अच्छा हो गया। लेकिन उसके बाद दादी ने इतनी पालना दी, चाहे फोन से, चाहे ईमेल से, कुछ भी करके, जब भी मैं फोन करूं, जब भी ईमेल करूं, कुछ भी करूं, वो बात करने को तैयार थी। शी वॉज देयर। टीचर को होना बहुत जरूरी है जब उसका स्टूडेंट को जरूरत पड़े। तो मेरे लिए सबसे बड़ा बाबा के बाद दादी जानकी एक टीचर रही है, क्योंकि उसने मुझे इन चीजों से निकाला है बाहर, नहीं तो मैं यहां बैठती नहीं शायद आपके सामने। क्योंकि ब्राह्मण कई बार इतनी चीजें करते हैं कि दूसरे लोग उनको ही बताएं, उनको ऐसा फीलिंग कराएंगे कि आप तो महापापी हो, आप तो ये हो, आप तो वो हो, दूसरे वो फीलिंग देते हैं। लेकिन दादी जानकी, उसने बात भी किसी को बताई भी नहीं, और किसी को पता ही नहीं कि वो मेरे को इतनी पालना क्यों दे रही है, मेरे लिए इंतजार करे, मेरे साथ गाड़ी में जाना है, एवरीथिंग शी डिड सो मच। तो वो तो हम कभी उसको चुकाने के लिए क्या करेंगे, बताइए, खुद ही अच्छे टीचर बन सकते हैं ना, यही कर सकते हैं। तो تو ایسے میرے ساتھ میرے پاس کافی اس طرح کے ایگزامپلز ہیں جو میری اپنی غلطیوں کے یا میرے جو کہیں ویکنیسز کے کہہ لیجئے کچھ بھی کہہ لیجئے جو برہمنوں کو نہیں ہونے چاہیے پر ہوتے ہیں, کرموں کے حساب کتاب تھا یا کچھ بھی تھا یا شریمت کے ورد چلے گئے یا کچھ بھی تھا. تو اسی لیے ٹیچر اسی سمے جب اس کو اسٹوڈنٹ کو اس کی ضرورت ہے اسی سمے آئے, فائر بریگیڈ کیا کرتی ہے تھوڑی دیر بعد آئیں گے بولتی ہے کیا, لیکن ٹیچر کیا کہا کل فون کرنا بعد میں بات کرنا, ٹیچر کا کام ہے وہیں ہونا اسی سمے جب اس کو اسٹوڈنٹ کو اس کی ضرورت ہو, چاہے رات ہو دن ہو کچھ بھی ہو, ہمارا سونے کا ٹائم ہے ابھی نہیں آنا, اس کا کیا ہوگا اسٹوڈنٹ کا. تو یہ اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ یہ پرکھ لے کہ یہ جو دادی جانکی نے کیا پرکھا کہ یہ جو ہے آتما اس کے اندر پوٹینشیل ہے, اس کے اندر یہ جو ہیرا ہے اس کے اندر کچھ چڑھ گیا ہے, یہ ڈسٹ اتارنی ہے, اس کو دکھائی پڑا. ہمیں بھی ہر ایک برہمن آتما کے اندر خاص کر جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے اندر یہ پوٹینشیل دیکھنا پڑے گا کہ یہ بھی ہیرا ہے, باہر کا نہیں دیکھیں. ہم جیسے بھی بتایا کہ باہر کا مت دیکھو, باہر کا نہیں دیکھو تو کیا دیکھو, آتما ہے بس آتما ہے, کون سی آتما ہے یہ دیکھنا. تو یہ ٹیچر کے کافی اچھے اچھے لکشن ہوتے ہیں جو جس میں کہ اسٹوڈنٹ سب ٹیچر کو بتا سکے, اس کو یہ لگے کہ جیسے میرے گھر کے بڑے ہوتے ہیں, جیسے گھر کے بڑوں کے پاس لوگ جاتے ہیں نا بزرگوں کے پاس, ویسے وہ ٹیچر کے پاس جا کے بات چیت کر سکے, اس کو سب بتا سکے سمجھا سکے. تو ٹیچر ایسا نہیں کہ آپ کو گلٹی فیل کرا دھرمراج کی ایک بڑی بڑی کتاب نکال کے لیا جی آپ نے تو یہ کیا آپ تو وہ کیا, یہ سب نہیں. ٹیچر اسٹوڈنٹ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو جائے لیکن اس کا سمبندھ بہت ضروری سمبندھ ہے, اسی سے برہمن جو ہے وہ آتما جو آگے بڑھ سکتی ہے. اور لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو بچہ بھی ہوتا ہے, ڈاکٹرز بھی یہ بات جانتے ہیں کہ بچے کو ٹچ کتنا ضروری ہوتا ہے جب کتنے بڑے ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ٹیچر جو ہے ٹیچر تو کسی کو نہیں دیکھے گی نا, بھائی یا بہن ہے, وہ کبھی اسٹوڈنٹ کو تھوڑا گلے لگا لے ہاتھ کر لے, دادی گلزار نے میرے ساتھ کیا اور دادیوں نے کیا ہے میرے ساتھ, مجھے پتا ہے اس میں کتنا فرق پڑتا ہے برہمن کو. اس سے اگر ہم جب ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو ہم باڈی کانشیس ہیں, دس از باڈی کانشیسنیس, اس کو باڈی کانشیس کہیں گے ہم تو. لیکن اس کو ضرورت ہے اس آتما کو, ایک ذرا سا آپ نے ہاتھ دے دیا ذرا سا اس کا بہت بڑی بات ہے اس کے لیے. تو یہ ہم کو اپنے آپ کو یہ جو ہم جب جائیں گے یہاں سے تو کیا لے کے جائیں گے, پرسوں میموریز کی بات ہو رہی تھی, یہی تو میموریز ہیں کہ ہمارے برہمن جیون میں کیا کیا باتیں ہوں, جو میموریز ہیں اسی کو ہم لے کر جائیں گے جب جائیں گے اس دنیا سے. تو اس لیے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں کا رشتہ بہت ضروری ہے. اوم شانتی.
ہم تم کھیل ادھورا چھوٹے نا, پیار کا بندھن جنم کا بندھن جنم کا بندھن ٹوٹے نا, ملتا ہے جہاں دھرتی سے گگن, ملتا ہے جہاں دھرتی سے گگن, آؤ وہیں ہم جائیں, تو میرے لیے میں تیرے لیے, تو میرے لیے میں تیرے لیے, کس دنیا کو ٹھکرائے, کس دنیا کو ٹھکرائے, دور بسا لیں دل کی جنت جس کو زمانہ لوٹے نا, پیار کا بندھن جنم کا بندھن جنم کا بندھن ٹوٹے نا,
بندھن ٹوٹے نا,
ملنے کے खुशी न मिलने का गम।
खत में ये झगड़े हो जाए, तू तू ना रहे, मैं ना रहूं, तू तू ना रहे, मैं ना रहूं,
एक दूजे में खो जाए, एक दूजे में खो जाए।
मैं भी न छोड़ू पल भर दामन, मैं भी न छोड़ू पल भर दामन,
तू भी पल भर रूठे ना, प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन।